आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
जम्मू और कश्मीर राज्य में अज्ञात बंदूकधारियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 26 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये साल 2000 के बाद से नागरिकों पर सबसे घातक हमलों में से एक बताया जा रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम के इस ग्रीष्मकालीन पर्यटन स्थल में हुई इस नृशंस घटना की निंदा की है और कहा है कि हमलावरों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। भारत में कश्मीर क्षेत्र के पहलगाम में 25 वर्षों में सबसे घातक नागरिक हमले के रूप में यह हमला सामने आया है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि पहलगाम के एक रिजॉर्ट में चरमपंथियों ने गोलीबारी कर कम से कम 26 पर्यटकों की हत्या कर दी है। पहलगाम हिमालय की पहाड़ियों में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने घटना स्थल की अफरा तफरी वाली स्थिति का वर्णन किया है।
तो हमने पीछे दो फायर दे सुने हैं, लोग जमा हो गए हैं, हमने ऊपर इसी के साथ ही फायरिंग शुरू हो गया है।
अच्छा।
जब जाइम हो गए वारदात पर पहुंचे हैं तो हमने 3 इंजर्ड को उठाया और अस्पताल किया।
इसी बीच पहलगाम जैसे दर्शनीय स्थल की यात्रा की आशा में पहुंचे अन्य पर्यटक घटनाक्रम के चलते बनी भ्रम की स्थिति में इंतजार करते रह गए।
हम अभी वापस श्रीनगर जाएंगे, पहलगाम आए थे घूमने के लिए, लेकिन ये टेररिस्ट अटैक होने की वजह से वापस घुमा दिया। 4 घंटे से इधर रुके थे,
श्रीनगर से 2 बजे निकले और हमको बीच में ही पता चल गया कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, तो हम 3-4 घंटे से यहीं रुके।
पुलिस ने इस घटना को आतंकी हमला बताया है और इसके लिए उन चरमपंथियों को जिम्मेदार ठहराया है जो इस क्षेत्र में भारतीय शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। हिमालय के क्षेत्र में चरमपंथी हिंसा का सिलसिला 1947 में दक्षिण एशिया के ब्रिटिश विभाजन के बाद से चला आ रहा है। इस विभाजन के समय कश्मीर चाइना, भारत और पाकिस्तान की सीमाओं के निकट स्थित एक विवादित क्षेत्र बन गया था। भारत और पाकिस्तान दोनों ही पूरे कश्मीर का दावा करते हैं। वर्तमान में कश्मीर का लगभग आधा क्षेत्र भारत शासित है, वहीं पाकिस्तान के पास एक तिहाई हिस्सा और चीन उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर नियंत्रण करता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खबर के बाद सऊदी अरब की अपनी 2 दिवसीय यात्रा को बीच में ही रद्द कर दिया है और वे नई दिल्ली लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक बयान में मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया और इस आतंकी कृत्य को अंजाम देने वालों को न्याय के कटघरे में लाने का वादा किया।
Condolences to those who have lost their loved ones. I pray that the injured recover at the earliest. All possible assistance is being provided to those affected. Those behind this heinous act will be brought to justice. They will not be spared. Their evil agenda will never succeed. Our resolve to fight terrorism is unshakable, and it will get even stronger.
1989 में भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू होने के बाद से इस क्षेत्रीय संघर्ष में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि हाल के वर्षों में हिंसा में कुछ कमी देखी गई थी। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हताहतों की सही संख्या की पुष्टि अभी नहीं हो सकी है, लेकिन उन्होंने इसे हाल के वर्षों में नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए सबसे बड़े हमलों में से एक बताया है। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के महासचिव रफी अहमद मीर ने पर्यटकों को उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त करने की कोशिश की है।
देखिए, तो उन तमाम के लिए ये गुजारिश है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम पुरामन शहरी हैं और सरकार का भी साथ है इसमें। ये देखा जाएगा कि ये वाकया कैसे हुआ है, तो मुझे लगता है इकट्ठे रहने की जरूरत है, पुरामन रहने की।
एक कम ज्ञात चरमपंथी संगठन कश्मीर रेजिस्टेंस ने सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से इस हमले की जिम्मेदारी ली है। संगठन ने उन लोगों पर नाराजगी जताई जिन्हें उन्होंने बाहरी लोग बताया और आरोप लगाया कि ये लोग क्षेत्र में बसकर जनसंख्या संरचना को बदल रहे हैं। इसका संदर्भ स्थानीय भारतीय अधिकारियों की उस रिपोर्ट से है जिसमें ये कहा गया कि पिछले 2 वर्षों में भारत के अन्य हिस्सों से आए लगभग 84,000 गैर स्थानीय लोगों को कश्मीर में डोमिसाइल यानी स्थानीय निवास के अधिकार दिए गए। भारतीय पत्रकार जफर चौधरी ने अल जजीरा को बताया कि कश्मीर रेजिस्टेंस द्वारा किए गए इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है और ये अक्सर देखा गया है कि कुछ समूह वास्तविक संलिप्तता ना होते हुए भी हमलों की जिम्मेदारी ले लेते हैं.
I think there has been a pattern over past 5-6 years that whenever an attack takes place, some informal or unorganized kind of groups, which are not really very well known, they take immediate responsibility of the attack. So Kashmir Resistance issued a statement claiming responsibility for this attack, and they wrote that because people from outside of India are coming to settle in Kashmir, but there is no official confirmation that whether that is really coming from a terrorist organization or the organization which is actually involved.
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जम्मू और कश्मीर में रात के दौरान निर्दोष नागरिकों पर हुए इस भयावह आतंकी हमले से मैं स्तब्ध हूं. इस तरह की हिंसा के लिए कोई भी तर्क उचित नहीं ठहराया जा सकता और ऑस्ट्रेलिया इसकी कड़ी निंदा करता है. हमारी संवेदनाएं घायलों, अपने प्रियजनों को खोने वालों और ऑस्ट्रेलिया में उन सभी लोगों के साथ हैं जो इस दर्दनाक खबर से प्रभावित हुए हैं. उनकी इस पोस्ट को साझा करते हुए विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने लिखा कि जम्मू और कश्मीर में हुए इस भयावह आतंकी हमले से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. ऑस्ट्रेलिया में हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए एक वक्तव्य जारी किया जिसमें कहा गया कि हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है. लिखित वक्तव्य में कहा गया कि हिंदू काउंसिल पहलगाम कश्मीर में हुए इस बर्बर आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है जिसमें जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया और निर्दोष नागरिकों एवं पर्यटकों की जान ले ली गई. ये कायरतापूर्ण कृत्य मानव जीवन के प्रति अपमान है और शांति, स्वतंत्रता तथा सभ्य समाज के मूल्यों पर सीधा हमला है. आतंकवाद का किसी भी देश में कोई स्थान नहीं है और हम इस शोक की घड़ी में सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुट हैं. ऑस्ट्रेलियाई हिंदू और भारतीय समुदाय इस त्रासदी से गहरे सदमे और दुख में है और निर्दोष जानों की इस क्षति का शोक मना रहे हैं. वहीं एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स क्वींसलैंड के अध्यक्ष अली रियाज ने एसपीएस हिंदी से बात करते हुए कहा कि
बड़े ही अफसोसनाक वाकया है, बड़ा ही डिस्टर्बिंग है और मैं इसको कड़े लफ्जों में मजम्मत करता हूं, इसे कंडेम करता हूं, बल्कि इसके लिए कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए. इंसानियत इज बहुत इम्पोर्टेंट मजहब है और हम जब ऐसे इंसिडेंट देखते हैं, स्पेशली हम प्रदेश में रहे तो बड़ा ही डिस्टर्ब हो जाते हैं. जो हमारे हम वतन जब जुल्म ज्यादती होती है तो हमारा दिल जो है कांप उड़ता है और हम उनके साथ हम जो है जो हेल्प सपोर्ट करना चाहिए हमें करना भी चाहिए. और दूसरी चीज जो जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस मिलनी चाहिए. ऐसे इंसिडेंट्स जो है डिसहारमोनी हो जाती है. जो लोग ये मंशा लेकर चल रहे हैं कि जो है ना सोसाइटी में चाहे वो रिलीजन बेस्ड हो या कोई दूसरा जो भी एजेंडा उनका हो, ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए. और सिक्योरिटी और जो सिटीजन्स की सिक्योरिटी वो पैरामाउंट है. तो मुझे बहुत अफसोस हुआ जिसमें लोग मारे गए और कई काफी जख्मी हो गए जिसमें दो फॉरेन नेशनल्स भी थे. तो जब मैं सुबह ये न्यूज सुना तो दिल कांप उठा के जो है ना ह्यूमैनिटी इज ऑलवेज ऑन द टॉप और मैं कड़े लफ्जों में मजम्मत करना चाहता हूँ.
भारत ने 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द कर दिया था जिसके बाद स्थानीय प्रशासन को ये अधिकार मिल गया था कि वे बाहरी लोगों को डोमिसाइल यानी स्थायी निवास के अधिकार दे सके. इससे उन्हें इस क्षेत्र में नौकरी पाने और जमीन खरीदने का अधिकार भी मिल गया था. अमेरिकी व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का कहना है कि अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सहयोगी भारत के साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं.
What we know already is dozens were killed and even more were injured in a brutal terrorist attack in a popular tourist location in South Kashmir. President Trump will be speaking with Prime Minister Modi as soon as he possibly can to express his heartfelt condolences for those lost, and our prayers are with those injured and our nation's support for our ally India.
इस खबर को आपके लिए प्रस्तुत किया एसपीएस न्यूज से सैम डवर और एसपीएस हिंदी से वृषाली जैन ने.
एसपीएस रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं.